नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। नमस्कार कुलविंदर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
धन्यवाद। नमस्कार प्रियंका जी आपको और सभी सुनने वालों को भी।
और आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। आईपीएल क्रिकेट में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला चल रहा है। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल ग्रीको रोमन श्रेणी में विनायक पाटिल और रोहित दहिया क्वार्टर फाइनल में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में कोलकाता में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट से जारी। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मतलब अभी जो खेल देख रहे हैं कुलविंदर जी, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन की तारीफ की जाए या जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो गेंदबाज है उनकी निराशाजनक जो परफॉर्मेंस है उस पर खेद जताया जाए।
देखिये प्रियंका, सबसे बड़ी बात ये आईपीएल खेल कुछ ऐसा है, ये ज्यादातर बैटर के लिए यानी कि बल्लेबाजों का खेल है। गेंदबाज बहुत कम है जो अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, कोई जसप्रीत बुमराह जैसा हो सकता है। और आपने अगर ध्यान से देखा, हमारे सुनने वालों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है उसके ऊपर संस्कृत का एक श्लोक लिखा है रोमन लिपि में, यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति ही, अर्थात जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। यहां कितने लोगों को अवसर मिला है, रिंकू सिंह भी यहीं आईपीएल से चमके। अब आप शुभम अपना दुबे जो है वो वापस फॉर्म आ चुकी है, कहीं कि नहीं है तो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आईपीएल के आधार पर, क्योंकि इस वर्ष अमेरिका और वेस्टइंडीज में T20 विश्व कप भी होने हैं, ये T20 का फॉर्मेट है। अभी अभी आप देखिए कि केवल 39 गेंदों पर शतक बनाया है, ट्रेविस हेड अभी अभी आउट हुए। तो अभी अगर देखा जाए 12 ओवरों में 165 बन चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तो अपना जो 27 मार्च को इन्होंने मुंबई इंडियन के खिलाफ 270 रन का जो स्कोर किया था उसको भी पार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो गेंदबाजी है खास तौर पर आरसीबी की, वो नहीं चल पा रही, इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी है कि अगर कितना भी बड़ा स्कोर होगा, बैटिंग अच्छी है आरसीबी की, कोहली है उनके ऊपर इनको उम्मीद है, बैटिंग अच्छी होने की वजह से उनको उम्मीद है कि हम बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, वैसी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले बैटिंग कर लें स्कोर छोटा रह जाए, तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज नहीं है, ऐसी बॉलिंग अटैक नहीं है कि हम उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकें। और इस बार तो SRH 2016 का विजेता है और ये पूरी तरह से फॉर्म में खेल रहा है। 70 मैच होने हैं अभी तक लीग मुकाबलों में, आज 30वां मुकाबला है, लगभग आधा सफर की ओर बढ़ चुका है आईपीएल का 17वां संस्करण। और ये देखिए कि यहां अब जो टीमें पिछड़ रही हैं, चाहे वो नीचे की टीमें हैं, मुंबई इंडियन है, डीसी है या आरसीबी है, उनको ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। जो ऊपर चल रही हैं आरआर, केकेआर, सीएसके और एसआरएच, वो शायद अंतिम चार में जगह बना लें।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आरसीबी का इस सीजन का अगर कुल परफॉर्मेंस देखें तो जो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है उनकी गेंदबाजी ही साबित हुई है। और क्योंकि जिस तरह मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी 196 रन बनाए मुंबई ने, सिर्फ 16वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया, तो गेंदबाजों की कहीं ना कहीं निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है।
देखिए आज के मुकाबले में देख लीजिए, रीस टॉपली ने पहले ओवर में 20 रन दिए, लॉकी फर्गूसन को शामिल किया गया है उन्होंने 18 रन दिए, यश ने दूसरे ओवर में 20 रन दिए। तो गेंदबाजी अगर प्रभावित कर पाती, सिराज को बाहर रखा गया एक टाइम पर, सिराज टेस्ट मैच का बहुत बढ़िया गेंदबाज था, भारत का है अभी भी, लेकिन यहां T20 में नहीं चल पा रहा, तो उसकी जगह लॉकी फर्गूसन को लिया गया, उसको भी 18 रन पहले ओवर में पड़ गए। तो मैं समझता हूं कि जो एक कमजोर कड़ी है वो गेंदबाजी, इसी वजह से उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है कि देखा जाएगा कितना बड़ा स्कोर बनेगा, उसको बना लेंगे हम।
और वैसे भी जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो पिच कहते हैं, वो कहते हैं कि बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है, और जिस हिसाब से ट्रेविस हेड ने 101 रन की शतकीय पारी खेल दी 39 गेंदों में, तो ऐसा लगता है वो चरितार्थ कर रहे हैं।
बिल्कुल, बाउंड्री छोटी है, देखिए उसकी बाउंड्री छोटी है, हालांकि आरसीबी अपने घर पर खेल रहे हैं।
जी जी,
अपने घर पर खेल रहे, अब शांत बैठे उनके दर्शक, क्या करें, क्योंकि एसआरएच है, सनराइजर हैदराबाद, वो इतना पावरफुल चल रहा है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, क्लासेन हो, अभी मार्करम को आना बाकी है, शायद अभी मार्करम आए हैं, उन्होंने एक रन बनाया, क्लासेन 25 पर है, तो जो भी आता है एक अच्छी साझेदारी निभाकर चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा स्कोर होगा। पहला विकेट 108 पर गिरा है और अब इस समय 13 ओवर समाप्त हुए हैं और 171 रन बने, मैं समझता हूं कि 270 के आसपास पहुंचेंगे, जो 27 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था।
हालांकि अगर आईपीएल में देखें तो दोनों टीमों के बीच आरसीबी और एसआरएच के बीच कुल 23 मैच हुए हैं, 10 आरसीबी ने जीते, 12 एसआरएच ने जीते, एक बेनतीजा रहा, तो जीत का फर्क दोनों में ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो देख रहे हैं उसमें एसआरएच का पलड़ा ही भारी दिख रहा है
पूरी तरह से। हालांकि दोनों टीमों के जो कप्तान है वो विदेशी हैं, पकडू फ्लेसी आरसीबी और पैट कमिंस हैं एसआरएच के, लेकिन पैट कमिंस भी नहीं चल पा रहे और पकडू फ्लेसी भी नहीं चल पा रहे, लेकिन बाकी जिनके ऊपर कप्तानी का दबाव नहीं है इस 17वें संस्करण में, मैं कहना चाहूंगा वो सब अच्छा कर रहे हैं। रोहित शर्मा के ऊपर अब दबाव नहीं है क्योंकि पंड्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछले कल के मुकाबले में शतक बनाया, ऐसे विराट कोहली ने सबसे ज्यादा अभी तक रन बनाए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो दबाव होता है ना कप्तानी का, उससे उभर कर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एसआरएस ने तो कमाल कर दिया, बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, हालांकि गेंदबाजी उनकी भी इतनी अच्छी नहीं है।
बिल्कुल, अगर एसआरएच ये मैच जीत लेती है तो टॉप 3 में आ सकती है, फिलहाल वो चौथे स्थान पर चल रही है। और अब आगे की बात करें कल के मैच की, तो कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 रन बनाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंदों में 69 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 38 गेंदों में 66 रन बनाए। वहीं मुंबई 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। कल का जो मैच कहते हैं, वैसे देखा जाए तो मुंबई इंडियंस और जो सीएसके के बीच मैच होता है उसको एल क्लासिको कहा जाता है, और कल के एल क्लासिको में बाजी सीएसके ने मार ली है, और जो हीरो रहे वो जूनियर कह सकते हैं, जो मलिंगा कहते हैं जिनको, मथीशा पथिराना, उन्होंने 4 विकेट लेकर बाजी मारी।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आम संघर्ष होता है तो कहते हैं दोनों आमने सामने लाल पीले हो रहे थे, यहां पर नीला पीला स्टेडियम था, एक तरफ मुंबई नीला समंदर और दूसरी तरफ मुंबई के घर में घुसकर सीएसकी के येलो ब्रिगेड ने किस तरह से दिखाया। और यहां तारीफ करनी पड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की, यानी कि हालांकि वो कप्तान नहीं है। पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की, उसके बाद सुरेश रैना ने की, उसके बाद जडेजा को मिली, और अब गायकवाड़ मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये चौथे कप्तान थे, लेकिन कल उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। तो जो दिमाग चलता है, धोनी रिव्यू सिस्टम इसलिए कहा जाता है डीआरएस को, तो उनके वजह से उन्होंने जिस तरीके से हराया और 200 से ऊपर रन बन जाए तो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। और विराट कोहली जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं आरसीबी के लिए, कल उन्होंने बहुत कोशिश की, रोहित शर्मा ने, उन्होंने शतक भी बनाया, नॉट आउट रहे, एक तरफ से पतझड़ की तरह पत्तों को उड़ते देखते रहे अपने विकेटों को, और बहुत शानदार 63 गेंदों पर 105 रन बनाए, 11 चौके 5 छक्के लगाए, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। शुरुआत अच्छी थी, 70 रन बने पहले विकेट की साझेदारी में और ईशान किशन के साथ, लेकिन जैसे विकेट गिरने शुरू हुए उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया, और जो हार्दिक पांड्या कह लीजिए, रोमारियो शेफर्ड कह लीजिए, सबकी कल जमकर पिटाई हुई।
बिल्कुल, और अगर देखें सीएसके का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था उन्होंने कल बदला था, वो रचिन रविंद्र के साथ अजिंक्य रहाणे आए ओपनिंग के लिए, उसके बाद जो 30 नंबर पर ऋतु राज गायकवाड़ आए और उन्होंने शिवम दुबे के साथ जो पार्टनरशिप की 90 रन की, उसने एक तरह से बहुत कुछ बदल दिया।
45 गेंदों पे 90 रन, बिल्कुल 7वें से लेकर 15वें ओवर के बीच में ये जो रन बने हैं, और रन यही बनते हैं, पहले 6 ओवर में पावर प्ले में जो रन बन जाए वो गिने जाते हैं, तेज गति से बन सकते हैं, उसके बाद 7वें से 15वें ओवर में आपको अपने पारी को संभालना होता है और रन बनाने होते हैं, यहां पारी भी संभली, विकेट भी नहीं गया और 90 रन बना दिए 45 गेंदों पर, और उसके बाद आखिरी जो 5 ओवर होते हैं उसमें तो फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है। तो जिस तरीके से 206 रन बनाए केवल 4 विकेट के नुकसान पर, वो कमाल का था, और उसके बाद दबाव में रहा जरूर मुंबई इंडियन, 186 बने 6 विकेट के नुकसान पर, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमें ऐसी हैं, देखिए 16 संस्करण हुए हैं उसमें से 10 संस्करण इन दोनों टीमों ने जीते हैं, दोनों 5-5 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं, बाकियों के हिस्से आने नहीं देते, ऐसे लगता है इनका मुकाबला जब भी होता है शायद ये फाइनल का ही मुकाबला है, लेकिन इस बार मुंबई इंडियन काफी पीछे है।
और आपको ये भी बता दें कल आईपीएल का जो मुकाबला होगा वो अहमदाबाद में होगा गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अब कुश्ती के अखाड़े में चलते हैं। किर्गिजिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के ग्रीको रोमन क्वार्टर फाइनल में कल विनायक पाटिल और रोहित दहिया अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। विनायक पाटिल 67 किलोग्राम भार वर्ग में और रोहित दहिया 82 किलोग्राम भार वर्ग में जापान के ताइजो योशिदा से खेलेंगे। इसके अलावा ग्रीको रोमन में ही प्री क्वार्टर फाइनल में 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवेश तथा 72 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। देखा जाए तो रोहित दहिया से बहुत उम्मीद है, चाहे विनायक पाटिल। रोहित दहिया दो साल पहले जब 2022 में अंडर 20 जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग हुई थी तो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, मेडल जीत के आए।
देखिए प्रियंका, शुरू से हमारे काफी अरसे से हमारे पहलवान बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पिछले साल दो साल में जो कुश्ती के संबंधित घटनाएं हुई उनका प्रभाव इन खिलाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जहां भारत को एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में उम्मीदें होती हैं पदकों की, उस पर कुठाराघात हुआ। प्रयास अच्छा कर रहे हैं सभी पहलवान अपने स्तर पर, लेकिन एक जो जोश होता है ना, एक बैकअप होता है कि बिहाइंड द कर्टन उनको हौसला अफजाई मिली। जैसा कि ओलंपिक में हमारे कोई भी खिलाड़ी पदक जीते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी मैदान पर उनसे फोन पर बात करते थे। आप सोचिए कितना हौसला बढ़ जाता है खिलाड़ी का। तो यहां अगर ये जो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई उसकी वजह से पहलवानों पर भी असर देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नाम तो इनका बहुत बड़ा है ही।
जी, और आपको आज के बारे में भी बता दें, आज 55 किलोग्राम भार वर्ग में अर्जुन हलाकुर्की, 63 किलोग्राम भार वर्ग में उमेश अजय 87 किलोग्राम और मेहर सिंह 130 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अपने मुकाबले हार गए। वहीं साजन भनवाल को भी 77 किलोग्राम भार वर्ग में हार का सामना करना पड़ा और ये इनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जिसमें वे हार गए। पहले ग्रीको रोमन भारतीय पहलवान बने थे जिन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था और आज वो मुकाबला हार गए, तो थोड़ी सी निराशाजनक बात लगी है।
बिल्कुल होता है, देखिए अगर पहलवान इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो न केवल वो खिलाड़ी बल्कि उसके चाहने वाले जो प्रशंसक होते हैं उनको भी दुख होता है।
अब आते हैं फुटबॉल के मैदान में। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कोलकाता में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मोहन बागान 1-0 से आगे है। अगर देखा जाए तो अंक तालिका में इस समय जो मोहन बागान है वो तीसरे नंबर पर है और काफी जो स्थिति है मजबूत है, और क्योंकि मुंबई इंडियंस दोनों बहुत बड़ी पक्की टीम है, क्योंकि मुंबई पहले नंबर पर और मोहन बागान तीसरे नंबर पर है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मुकाबला देखने में मजा आ रहा है।
देखिए मुंबई इंडियंस मुंह से निकला, हालांकि क्रिकेट चल रही है मुंबई की टीम
जी।
तो ये देखिए फुटबॉल के बारे में बहुत अरसे से भारत में खेली जा रही बड़ी बड़ी टीमें हैं, वेस्ट बंगाल का नाम है, नॉर्थ ईस्ट हुआ, केरल हुआ, सन 1888 में शिमला में डूरंड कप फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। फुटबॉल का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन वर्तमान समय में जो भारतीय खिलाड़ी हैं या भारतीय फुटबॉल है वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है। उम्मीद करते हैं कि कुछ विदेशी कोचों के प्रशिक्षण में भारतीय फुटबॉल टीम भी आगे बढ़ पाएगी।
और आपको कल बता देंगे मडगांव में फुटबॉल क्लब गोवा ने चेन्नई फुटबॉल क्लब को 4-1 से हराया था। मैच का पहला गोल चेन्नईयन फुटबॉल क्लब की तरफ से रहीम अली ने 13वें मिनट पर किया, जिसके बाद फुटबॉल क्लब गोवा की तरफ से पहले हाफ में 3 गोल हुए और दूसरे हाफ में कार्लोस ने 72वें मिनट में चौथा गोल किया। बात शतरंज की, ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने पिछले मैच में शिकस्त के बाद जोरदार वापसी करते हुए कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर में अमरीका के हिकारू नाकामूरा को हरा दिया है। डी कोकेश और आर प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि किसी अन्य बाजी का भी नतीजा नहीं निकला। साल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अब 5 दौर का खेल बाकी है। इसके अलावा बता दें आपको प्रज्ञानंदा 5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रूस के इयान नेपोमनियाची और गुकेश संभावित 9 में से 5.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। और महिला वर्ग में बात की जाए तो आर विशाली की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा है, जब उन्होंने चीन की झोंगी टैन से शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। चीन की इस खिलाड़ी ने संभावित 9 में से 6 अंक के साथ एकल बढ़त बना ली है। और भारत के जेहान दारूवाला ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज फार्मूला ई में अपने पहले सत्र में खराब शुरुआत के बाद पहला अंक जुटाया है। फार्मूला 2 में 4 सत्र बिताने के बाद फार्मूला ई से जुड़ने वाले जेहान ने मासेराती एमएसजी रेसिंग की ओर से प्रतिस्पर्धा करते हुए नौवां स्थान पर रहते हुए दो अंक हासिल किए।
अपडेट दे दें, 15 ओवर में 205 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर। मुझे तो लगता है कि आखिरी 5 ओवर में शायद अपने पुराने 217 के आसपास पहुंच जाए।
जी हां, और ऐसा ही रोमांच जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रियंका अरोड़ा और कुलविंदर जी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।